नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित चावला और मैं आप सबका स्वागत करता हूं तलाश इंडिया क्राइम्स पॉडकास्ट के 15वें एपिसोड में। आज की कहानी काफ़ी यूनिक है। आपको पहले भी कई कहानियां मैंने सुनाई है जिसमें मोहब्बत को लेके कत्ल किए गए, पर आज की कहानी इतनी अलग है कि एक आदमी मोहब्बत के लिए कितनी साजिशें रचता है और किस हद तक जाता है वो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आज की कहानी में दो किरदार हैं, पहला गोकुल माचेरी और दूसरी धन्य बाबू। ये दोनों स्कूल में साथ में पढ़ते थे। गोकुल केरला का रहने वाला था, स्कूलिंग उसने केरला में की। उसके बाद हाई स्कूल करने के लिए वो दिल्ली आया, हाई स्कूल दिल्ली में किया और उसके बाद कॉलेज भी उसने दिल्ली में किया। धन्य बाबू जो उसकी स्कूल की गर्लफ्रेंड थी, उसने भी इसके साथ दिल्ली आके पढ़ाई की। 2002 से लेकर 2007 तक ये दोनों एक साथ पढ़ाई लिखाई करते रहे, जिस बीच इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ी और दोनों में प्यार हो गया। 2007 में दोनों की पढ़ाई ख़त्म हुई, दोनों इंजीनियरिंग कर रहे थे। गोकुल दिल्ली में ही रह गया और उसकी गर्लफ्रेंड धन्य बाबू वापस साउथ इंडिया आ गई, कर्नाटका में। दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं जो कि दूर दूर हैं, जिस वजह से दोनों में दूरियाँ बढ़ती हैं और दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं। गोकुल दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर नौकरी कर रहा होता है और धन्य बाबू बेंगलोर में नौकरी करती। 2009 से लेकर 2011 के बीच में दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा चेंज आता है। गोकुल जो दिल्ली में जॉब कर रहा था, उसको एक लड़की पसंद आती है, अनुराधा नाम की, जो रांची की रहने वाली थी पर उसका जन्म बंगाल में हुआ था। वो दिल्ली में किसी इंस्टीट्यूट में एक टीचर थी। दोनों गोकुल और अनुराधा को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दूसरी तरफ धन्य बाबू को भी एक लड़का पसंद आता है जिसका नाम था साजू जोस। दोनों नज़दीक आते हैं, दोनों में प्यार होता है और अब दिल्ली में गोकुल की शादी अनुराधा से हो जाती है और इस तरफ बेंगलोर में धन्य बाबू की शादी साजू जोस से हो जाती है। दोनों की घर गृहस्थी अपने हिसाब से चल रही थी, लेकिन गोकुल को अनुराधा पर शक हो जाता है। गोकुल को ये शक हो जाता है कि अनुराधा का अफेयर किसी और से है। वो अनुराधा से पूछता है और अनुराधा इस चीज़ को डिनाई कर देती है, पर फिर भी गोकुल का शक जाता नहीं है। अब इस शक की वजह से दोनों में दूरियां बढ़ती हैं और इनकी शादी को हुए कुछ समय ही हुआ होता है, ये 2011 की बात है, और इस दूरी की वजह से गोकुल को अपने पुराने प्यार धन्य बाबू की याद आने लगती है। लेकिन धन्य बाबू दिल्ली छोड़ चुकी होती 2007 में, तो गोकुल को धन्य बाबू के बारे में कुछ पता ही नहीं कि वो कहाँ है, किस शहर में है, क्या करती है, कहाँ रहती है। तो वो सोशल मीडिया के ज़रिए धन्य बाबू को ढूंढने की कोशिश करता है। इस तरह फेसबुक के ज़रिए गोकुल को पता चलता है कि धन्य बाबू बेंगलोर में है, वहाँ नौकरी कर रही है, उसकी शादी हो गई है और उसके दो बच्चे भी हैं। इधर गोकुल की भी एक बेटी थी, तो सोशल मीडिया के ज़रिए दोनों वापस टच में आए, दोनों की बातचीत हुई और गोकुल को ऐसा लगा कि धन्य बाबू अभी भी गोकुल से प्यार करती है और गोकुल तो उससे अभी भी प्यार करता ही था। जैसे ही गोकुल को अंदाज़ा होता है कि धन्य बाबू भी अभी भी उससे प्यार करती है, तो वो अनुराधा को अपनी ज़िंदगी से हटाना चाहता था, डिवोर्स का रास्ता नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसमें कई कानूनी दावपेच होते हैं। तो यहाँ पर गोकुल पहली साजिश रचता है और ये साजिश कई और साजिशों को अंजाम देती हैं। पहली साजिश रचता है कि अनुराधा को अपनी ज़िंदगी से कैसे हटाया जाए। गोकुल की पहली साजिश अनुराधा को हटाने की और धन्य बाबू को अपनी ज़िंदगी में वापस लाने की ये थी कि वो फर्जी कागज़ों से एक सिम कार्ड खरीदता है, एक दूसरा फ़ोन लाता है और उस सिम कार्ड से एक बाबा बनकर अपनी ही बीवी अनुराधा को फ़ोन करता है अपनी आवाज़ बदल कर, और दूसरी तरफ एक फेक फेसबुक पे आईडी बनाता है अब बाबा बनकर, और अनुराधा इस बाबा से फेसबुक पर भी जुड़ जाती है। लगातार अनुराधा से बाबा बनकर बातचीत करता रहता है, जिससे अनुराधा को इस बाबा पर काफ़ी भरोसा हो जाता है। भरोसा जीत लेने के बाद गोकुल, जो बाबा बनकर अनुराधा से उसकी ज़िंदगी के बारे में और जानकारी निकलवाता है, इसके पीछे गोकुल का एक ही मकसद था कि वो जानना चाहता था कि अनुराधा का किसी से अफेयर था, और अफेयर था तो क्या अभी भी वो अफेयर चल रहा था। अनुराधा बाबा के झांसे में इस तरह फंस चुकी थी कि वो बाबा के सामने अपने इश्क को कन्फेस करती है। وہ بابا کو بتاتی ہے کہ انسٹیٹیوٹ میں ہی ایک اس کا اسٹوڈنٹ تھا جس سے اس کا افیئر ہو گیا تھا اور دونوں میں شاریرک سمبندھ بھی تھے۔ گوکل بابا بن کے انورادھا کو اور اپنے جھانسے میں لیتا ہے اور انورادھا سے کہتا ہے، جیسا میں کہتا ہوں ویسی کرتے جاؤ، اس سے تمہارا جو اسٹوڈنٹ سے پیار ہے وہ بھی برقرار رہے گا، دوسری طرف گوکل کے ساتھ بھی تمہارا رشتہ بنا رہے گا، اور تمہارے اس اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو پیار ہے اس رشتے کو گوکل کبھی آبجیکٹ نہیں کرے گا۔ انورادھا بابا کی اس بات سے کنونس ہو جاتی ہے۔ بابا کچھ اوٹ پٹانگ پوجا وغیرہ کرواتا ہے انورادھا سے۔ اس کے بعد گوکل بابا بن کر انورادھا کو ایک بات کے لیے کنونس کرتا ہے کہ تم اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ اپنی ایک نیوڈ فوٹوگراف کھینچو، اس کے بعد ایک خاص پوجا ہوگی اور اس پوجا کے بعد تمہارے ہسبینڈ کے سامنے اگر یہ تصویر آ بھی گئی تو کس تمہاری اس پیار کو وہ آبجیکٹ نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا، اور دوسری طرف تمہارا بوائے فرینڈ بھی تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری شادی بڑھیا چلتی رہے گی۔ انورادھا پھر بابا کے جھانسے میں آ جاتی ہے، وہ ایک ہوٹل میں کمرہ بک کرتی ہے، وہاں اپنے بوائے فرینڈ کو بلاتی ہے اور دونوں کی فوٹوگرافس، نیوڈ فوٹوگرافس، فون کے کیمرے سے کیپچر کر لیتی ہے۔ یہ ساری فوٹوگرافس گوکل کے ہاتھ لگ جاتی ہیں کیونکہ یہ ساری کی ساری سازش بابا بن کر گوکل نے ہی رچی تھی۔ اس کے بعد گوکل یہ ساری کی ساری فوٹوگرافس اپنے سسر کو، مطلب انورادھا کے فادر کو، فارورڈ کر دیتا ہے۔ انورادھا کے فادر یہ فوٹوگرافس دیکھ کے انورادھا پہ بہت غصہ ہوتے ہیں اور دوسری طرف اپنے داماد گوکل پر گرو محسوس کرتے ہیں کہ اس کی بیٹی نے ایسی حرکت کری ہے۔ اس کے بعد بھی گوکل بیٹی کے ساتھ اچھا برتاؤ کر رہا ہے، اس کے ساتھ ابھی بھی رہ رہا ہے۔ اس طرح گوکل اپنے سسر کا کانفیڈنس حاصل کر لیتا ہے۔ گوکل ڈیورس کے راستے جانا چاہتا ہی نہیں تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کئی قانونی داو پیچ ہوں گے اور ہو سکتا ہے کہ اس کا فیک فیس بک پروفائل وغیرہ جو اس نے بنایا ہے وہ بھی کھل جائے، تو وہ فیصلہ کرتا ہے کہ انورادھا کو راستے سے ہٹانا ہی بہتر ہوگا۔ 2013 میں یہ فوٹوگرافس وہ اپنے سسر کو فارورڈ کرتا ہے، انورادھا کی فوٹوگرافس، اور 2014 میں ٹرانسفر لے کر وہ بنگلور پہنچ جاتا ہے اور فلیٹ اسی بلڈنگ میں لیتا ہے کرائے پہ جہاں پر دھنیہ بابو اپنے ہسبینڈ ساجو جوس اور دو بچوں کے ساتھ رہتی ہے۔ دونوں سیم بلڈنگ میں، گوکل اور دھنیہ بابو، جس سے دونوں کی نزدیکیاں بڑھتی ہیں، پر ایک طرف انورادھا اور دوسری طرف ساجو جوس، یہ دونوں اڑچن ہوتے ہیں۔ اب گوکل یہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے ساجو جوس ہٹ جائے جس سے یہ واپس دھنیہ بابو سے شادی کر سکے، تو اب اس کے لیے ایک سازش رچتا ہے اور سب سے پہلے وہ پھر سے فیک آئی ڈی سے ایک نیا سم کارڈ لیتا ہے اور اب ساجو جوس کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہاری بیوی دھنیہ بابو ٹھیک نہیں ہے، تم اس کو ڈیورس دے دو، یہی تمہارے لیے اچھا رہے گا۔ پر ساجو جوس اس کی بات کو سن کر نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسری طرف وہ اپنی پریمیکا کو بھی فون کرتا ہے اور میسیجز دیتا ہے کہ تم اس کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہے، اور وہ بھی اس کی باتوں کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ جب یہ سب کرنے کے بعد بھی بات نہیں بنتی ہے تو گوکل ایک اور نئی سازش بنتا ہے۔ گوکل ایک اور فیس بک آئی ڈی بناتا ہے آئسس کے نام اور اس فیس بک میں ساری ڈیٹیل ساجی جوس کی ڈال دیتا ہے۔ وہ یہ فیس بک آئی ڈی بنا کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ ساجو جوس ایک آئسس کا ملیٹنٹ ہے۔ اس فیس بک پیج پہ گوکل کئی چیزیں پوسٹ کرتا ہے، اسے لگتا ہے کہ سائبر سیل کی اس چیز پہ نظر پڑے گی اور وہ ساجو جوس کو اریسٹ کر لیں گے، لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد گوکل ایک اور سازش بنتا ہے اور اس بار وہ سوچتا ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے جس سے ساجو جوس سیدھا سلاخوں کے پیچھے پہنچ جائے، اور سلاخوں کے پیچھے جانے کے بعد اس کی بدنامی ہوگی، اس کی بیوی اس کو چھوڑ دے گی اور اس کے بعد میں دھنیہ بابو سے شادی کر لوں گا۔ یہ جو سازش تھی وہ اس کی سب سے خطرناک، کیونکہ گوکل اسی اپارٹمنٹ میں رہتا تھا، اسی بلڈنگ میں رہتا تھا جہاں پر دھنیہ بابو اور ساجو جوس رہتے تھے، تو اس کو کئی بار موقع مل جاتا تھا ان کے گھر میں جانے کا۔ تو ان کے گھر میں جانے کے بعد وہ ساجو جوس کے پاسپورٹ، مارک شیٹس اور کچھ اور آئیڈینٹیفیکیشنس چوری کر لیتا ہے، ان کی فوٹو کاپی کرواتا ہے اور سارے کے سارے ڈاکیومنٹس واپس اسی جگہ رکھ دیتا ہے، اور پھر ان آئیڈینٹیفیکیشن سے وہ ایک نیا سم کارڈ لیتا ہے اور ایک نیا فون خریدتا ہے۔ اب دوسری طرف گوکل پھر بابا بن کر انورادھا کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایک آخری چیز کرنی ہے جس سے तेरा पति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और इस आखिरी पूजा करने के लिए तुम्हें बेहिसाब शराब पीनी है। शराब पीने के बाद ये पूजा होगी और तुम जब तक बिल्कुल नशे में ना हो जाओ तब तक तुम शराब पीती रहोगी। 28 जुलाई 2015 को गोकुल अपने घर वापस पहुंचता है। अनुराधा अपने पति से शराब की बोतल बुलवाती है और वो शराब पी, गोकुल भी साथ में थोड़ी शराब पीता है। शराब पीते पीते 12:30 बज जाते हैं और अनुराधा बेहद नशे में हो जाती। उसके बाद गोकुल अपनी प्रेमिका धन्य बाबू को फोन लगाता है और अपनी बीवी अनुराधा की बात धन्य बाबू से और साजू जोश दोनों से करवाता है, उससे जिससे कि इनको पता चल जाए कि वो बीवी नशे में थी और उस वक्त ये दोनों साथ में थे। इसके बाद गोकुल फोन काटता है। अनुराधा पूरे नशे में आ चुकी थी और वो घर से 1-2 फीट लंबी पीतल की गणेश जी की मूर्ति उठाता है और उस मूर्ति से अनुराधा के सिर पे वार करता है। वो अनुराधा के सिर पे 2 वार करता है। इस बीच दूसरे कमरे से उसकी बेटी के रोने की आवाज़ आती है। वो अपनी बेटी के कमरे में जाता है, बेटी को सुलाता है और वापस बीवी के कमरे में आता है। आके देखता है कि बीवी पलंग पे पड़ी हुई है, पर उसे विश्वास नहीं होता है कि वो मर गई है। तो तीसरी बार फिर से गणेश जी की पीतल की मूर्ति से वो जोर से वार करता है और फिर चेक करता है कि बीवी मरी कि नहीं मरी। सांसें चेक करता है, सांसें बंद हो गई थी। गोकुल थोड़ी देर और इंतज़ार करता है, उसके बाद अपने सास ससुर को फ़ोन करता है और उनको कहता है कि शराब के नशे में वो टेबल से टकराती है जिससे गणेश जी की मूर्ति उसको लगती है, जिससे उसको बहुत बुरी तरह चोट लग गई है। मैं उसको हॉस्पिटल लेके भाग रहा हूँ, आप लोग भी वहाँ जल्दी आ जाए। वो हॉस्पिटल लेके पहुँचता है, दूसरी तरफ उसके माँ बाप भी वहाँ पहुँचते हैं, पर जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है उसको मुर्दा करार दे दिया जाता है। पुलिस आती है, जांच शुरू करती है, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी बनवाई जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर यह आता है कि उसके सिर पर 3 बार जोर से वार हुआ है और ये चोटें जो उसके सर पर हैं वो गिरने से नहीं होती, पर किसी ने उस पर उसके सर पर वार किया है। तो पुलिस शक के बुनियाद पर गोकुल को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उस वक्त घर पर कोई और नहीं था। पुलिस जैसी गोकुल को अरेस्ट करती है, पुलिस थाने कोई और नहीं अनुराधा के फादर पहुंचते हैं और वो कहते हैं ये मेरा दामाद को आपने कैसे अरेस्ट कर लिया, ये बहुत ही अच्छा आदमी है, मेरी बेटी ही बुरी थी और वो नशे में थी, नशे की वजह से वो गिरी और उसके सिर पर चोट लगी और वो एक एक्सीडेंटल डेथ थी, ये मर्डर हो ही नहीं सकता। पुलिस बार बार उनको समझाती है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से तो यही है कि उस पर वार हुआ है 3 बार, पर ये दोनों मानते नहीं हैं। तो पुलिस हार कर इस केस को एक्सीडेंटल डेथ करार करते हुए गोकुल को छोड़ देती है। गोकुल का काम यहाँ पूरा नहीं हुआ था, उसकी बीवी तो अपने रास्ते से हट गई थी पर अब धन्य बाबू के हस्बैंड साजू जोश को हटाना बाकी था। गोकुल सितंबर 2015 रात को 1:20 पर बेंगलोर एयरपोर्ट पर फोन लगाता है, उसी सिम से फोन लगाता है जिस सिम को उसने साजू जोश की आइडेंटिफिकेशन से बनवाया था। बेंगलोर एयरपोर्ट पर उसका फोन कोई नहीं उठाता। उसके बाद वो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फोन लगाता है और वहाँ फोन आंसर हो जाता है और फोन पर वो कहता है हमने 3 इंटरनेशनल फ्लाइट पे बॉम्ब रखा हुआ है, मैं ISIS का मिलिटेंट हूँ और ये तीनों प्लेन बॉम्ब से उड़ जाएंगे, रोक सकते हो तो रोक लो। इसके बाद बाकायदा उसने 3 फ्लाइट की डिटेल दी। पहली फ्लाइट थी जेट एयरवेज की जो हांगकांग जा रही थी, दूसरी फ्लाइट थी स्विस एयरवेज की जो ज्यूरिख जा रही थी और तीसरी फ्लाइट थी कैथे पैसिफिक की जो हांगकांग जा रही थी। यहाँ फ़ोन रखते ही वो वापस बेंगलोर फ़ोन लगाता है, बेंगलोर में फिर से कोई फ़ोन नहीं उठाता। तो उसके बाद बेंगलोर एयरपोर्ट पर ये एक मैसेज करता है, मैसेज ये करता है कि लुफ्तानजा एयरवेज की फ़्लाइट नंबर LX755, सऊदी अरेबिया एयरलाइन की फ़्लाइट नंबर SB5643 और एयर फ्रांस फ्लाइट नंबर AF191 इन सब में बॉम्ब रखा हुआ है और हवा में है, इनको बॉम्ब से उड़ जाएंगे। ये फ़ोन कॉल से दिल्ली एयरपोर्ट में खलबली मच जाती है और बेंगलोर एयरपोर्ट पर ये मैसेज पहुंचते ही वहाँ भी कोहराम मच जाता है। इनमें से 2 प्लेन ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुके थे, इन प्लेन्स पे मैसेज पहुंचाया गया कि आप लोग फटाफट वापस एयरपोर्ट पहुंचे। तीसरी फ्लाइट जो कैथे पैसिफिक की थी वो अभी ग्राउंड पे ही थी, बस उड़ने की तैयारी थी। फटाफट उस फ्लाइट को रोका जाता है और उसे एयरपोर्ट के एक कॉर्नर पे ले जाया जाता है। फटाफट पैसेंजर्स को प्लेन से उतारा जाता है, बॉम्ब स्क्वाड वहाँ जाके तलाशी करती है, बॉम्ब नहीं मिलता। इसी बीच वो दूसरे दो प्लेन जो ऑलरेडी एयरबॉर्न थे वो एयरपोर्ट वापस पहुँचते हैं, उनको भी एयरपोर्ट के कोने में पहुँचाया जाता है, उनकी तलाशी की जाती है, उनमें से भी कोई बॉम्ब नहीं मिलता। सब राहत की सांस लेते हैं, पर क्योंकि आईएसएस का नाम था तो इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया गया। पुलिस जिस नंबर से फ़ोन आता है उस नंबर को ट्रेस करती है, उसकी जांच करती है, और जांच करने के बाद उनको पता चलता है कि ये नंबर एक बेंगलोर का है और ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का नंबर है, और जिसके नाम पे वो नंबर है उस आदमी का नाम साजू जोस है। पुलिस साजू जोस के घर पहुँचती है, उसको अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन ले आती है। पुलिस साजू जोस के घर की तलाशी भी करती है तो वहाँ पर मुस्लिम्स की एक टोपी जो नमाज पढ़ने टाइम यूज़ करते हैं वो, और एक चाक बरामद होता है। पर हैरानी की बात यह है कि वो फ़ोन नहीं मिला था पुलिस को जिस फ़ोन से एयरपोर्ट फ़ोन किया गया था, और पुलिस ये भी देख रही है कि फ़ोन अभी भी एक्टिव है, स्विच ऑफ नहीं है। फ़ोन की लोकेशन उसी टावर की है जो साजू जोस के घर के पास है, और फ़ोन एक्टिव दिख रहा है, पर पुलिस को फ़ोन कहीं मिला ही नहीं। बहुत ढूंढती रही पुलिस, पुलिस को फ़ोन नहीं मिला। उसके बाद पुलिस वहाँ से निकल जाती है। पुलिस के निकलते ही गोकुल इनके घर पहुँचता है धन्य बाबू को दिलासा देने को कि वो बहुत परेशान है, बड़ा दुखी है कि ऐसा क्या हो गया। फिर उसके बाद उनको कहता है कि चलो हम पुलिस थाने चलते हैं और जाकर समझते हैं कि आगे क्या हो रहा है। उसके बाद वो दोनों को साजू जोस की गाड़ी में ही बिठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकलता है। पुलिस ने उस मोबाइल को सर्वेलेंस पर लगा के रखा था, और एकदम से उनको ये नज़र आता है कि वो मोबाइल फ़ोन मूव कर रहा है। पुलिस ट्रेस करती रहती है, उससे उनको समझ में आता है कि मोबाइल एक कार में है। पुलिस वहाँ पहुँचती है, गाड़ी रोकती है, और गाड़ी के कारपेट के नीचे से ये मोबाइल मिलता है। इस मोबाइल पे सिम वही थी जिस नंबर से एयरपोर्ट पे फ़ोन किया गया था। गाड़ी थी साजू जोस की, तो ये तो इससे साजू जोस के अगेंस्ट एक और एविडेंस मिल जाता है। पुलिस ये फ़ोन लेके साजू जोस के पास पहुंचती है। साजू जोस कहता है ये फ़ोन मेरा नहीं है, ना ही ये नंबर मैंने कभी इस्तेमाल किया है। लेकिन पुलिस कहती है कि तुम्हारी ही आईडी से ये सिम कार्ड लिया गया है और फ़ोन भी खरीदा गया है। साजू जोस इस चीज़ को मानता नहीं है, पुलिस को मना करता है कि ये उसने नहीं किया। पुलिस ट्रेस करते हुए उस शॉप पर पहुँचती है जहाँ से ये सिम कार्ड लिया गया था। वहाँ जाके साजू जोस की फोटोग्राफ दिखाई जाती है, तो दुकानदार इस फोटो को देख के मना कर देता है कि ये भाई साहब ने ये सिम कार्ड नहीं लिया। फिर पुलिस को एक और क्लू मिलता है जो इस केस को पूरी तरह खोल के रख देता है। एयरपोर्ट फ़ोन करने के पहले 2-3 दिन पहले गोकुल इसी फ़ोन से अपनी गर्लफ्रेंड धन्या बाबू को फ़ोन करता है। जब साजू जोस की वाइफ के कॉल रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तो उसमें एक नंबर ये भी आ गया जिस नंबर से एयरपोर्ट फ़ोन किया गया था। पुलिस अब धनिया बाबू से पूछताछ शुरू करती है, तो वो बताती है कि इस फ़ोन नंबर से गोकुल ने उसको फ़ोन किया था। पुलिस गोकुल के पास पहुंचती है, उसे अरेस्ट करती है, और इस बीच में वो मोबाइल वाले ने जहां से सिम कार्ड ली गई थी वो भी गोकुल को आइडेंटिफाई कर लेता और वो बता देता है पुलिस को कि ये सिम कार्ड गोकुल ने ही लिया था। पुलिस गोकुल के घर पहुँचती है तो उसके लैपटॉप पर पुलिस को ये सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि फेसबुक पर किस तरह फेक आईडी आईसिस की बनाई गई, किस तरह फेक आईडी एक बाबा की बनाई गई, किस तरह आईसिस की जो फेक आईडी बनाई गई उसमें साजू जोस की सारी डिटेल्स डाली गई। ये सारे प्रूफ एविडेंस गोकुल की तरफ थे, और पुलिस को ये यकीन हो गया कि इसमें गोकुल का ही हाथ है और साजू जोस और उसकी वाइफ धन्या बाबू का इसमें कोई हाथ नहीं है। थोड़ी देर बाद गोकुल टूट जाता है, वो सारी बातों को ये सारी बातें पुलिस को सुनाता है, और वो कहानी वही बताता है पुलिस को जो मैंने अब तक आपको सुनाई। तो इस तरह एक होक्स कॉल गोकुल ने किया जिसकी वजह से दूसरे जुर्म का खुलासा हुआ। गोकुल फिर जेल चला गया, उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई एक होक्स कॉल के लिए जो दिल्ली एयरपोर्ट पे किया, और दूसरा अपनी पत्नी के मर्डर का। गोकुल अभी भी उम्र कैद की सज़ा काट रहा है। इस कहानी में एक चीज़ और बची है, गोकुल की एक बेटी थी, अब वो पूरी तरह अनाथ हो गई। बाप जेल चला गया, माँ को गोकुल ने मार दिया, अब इस लड़की की परवरिश कौन करेगा? गोकुल के जो माँ बाप थे वो खुद बहुत बुजुर्ग थे, तो फिर गोकुल की गर्लफ्रेंड धन्या बाबू और उसका हस्बैंड साजू जोस दोनों आगे बढ़े, और उन्होंने कहा कि अगर इनके परिवार को, अगर गोकुल के परिवार को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ये बच्ची को वो गोद लेके उसकी देखभाल करना चाहते हैं। और उसकी परवरिश करना चाहते हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। तो ये थी आज की कहानी कि एक इंसान एक प्यार को, अपने प्यार को पाने के लिए कितनी साजिशें कर सकता है। थैंक यू दोस्तों तलाश इंडिया क्राइम पॉडकास्ट के 15वें एपिसोड को सुनने के लिए। नमस्कार।